हरे कृष्णा, दिस क्लास वॉज गिवन ऑन भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 34 एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ऑन 24 जनवरी 2017 बाय माई सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
अकीर्तिम चापि भूतानि कत्यशन्ते ते अव्ययम् संभवावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिचयते।
इसका अनुवाद साथ में पढ़ेंगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को काफी सारी चीजें बता चुके हैं पिछले श्लोकों में। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध को नहीं लड़ते हो तो चार काम होने वाले हैं। पहला, तुम अगर मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। क्या लगेगा? तो अगर हम भी भगवान का कहा नहीं मानते हैं तो हमें क्या लगेगा? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, कली काले नाम रूपः कृष्णस्तु अवतार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में आए हैं। अब जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप नहीं करता उसने क्या किया है? भगवान ने कहा, यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्यन्ते सर्वकल्पेषां। जो व्यक्ति बिना भोग लगाए खाना खाएगा वो क्या खाएगा? पाप खाएगा। भगवान ने कहा चार काम करने हैं और चार काम नहीं करने हैं। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति भगवान के कहे अनुसार नहीं चलता, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो लेकिन अर्जुन नहीं करना चाह रहे तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। दूसरा, भगवान ने कहा कि आपका स्वधर्म है, हमने चर्चा की है पहले, आपका स्वधर्म है क्षत्रिय होने के नाते क्या करो? युद्ध करो। तो हम सबका स्वधर्म क्या है? हम क्योंकि आत्मा है, आत्मा का एक ही कर्तव्य है क्या? जीवे रे स्वरूप होए नित्यर कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का क्या बन जाए, और जो नहीं बन रहा वो क्या कर रहा है? अपने स्वधर्म को सही से पालन, ये स्वधर्म है हमारा। शरीर का धर्म का नाम है, शरीर का एक नाम है मरण धर्मा। क्या नाम है? ये तो मरने के लिए बना है। या तो 10 साल में मरेगा, 20 में मरेगा, 25, 30, 50, 60, 100, इसके ऊपर तो मुश्किल है। तो मरण धर्मा, शरीर के धर्म का पालन करने में हम कितना कुछ करते हैं, पर स्वधर्म के लिए 0। स्वधर्म के लिए क्या करना है? इस आत्मा को कैसे परमात्मा की सेवा में लगाएं, इसी के लिए नाम जप किया जाता है, इसी के लिए कथा श्रवण की जाती है, इसी के लिए भगवद गीता अध्ययन किया जाता है और भोग लगा के प्रसाद पाया जाता है और चार प्रकार के नियमों से बचा जाता है, जिसमें हम शराब सिगरेट नहीं पीते हैं, हम क्या नहीं खाते हैं, हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं, हम मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, तीसरा हम जुआ आदि नहीं खेलते हैं, और चौथा हम क्या करते हैं, पर स्त्री पर पुरुष संघ के लिए विचलित नहीं होता है ना, वो कार्य नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो ये चार कार्यों को बंद कर देता है वो अपने स्वधर्म को पालन कर रहा है। जीव का स्वरूप ही है भगवान का दास बनना। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन अपने स्वधर्म का पालन करो। तीसरा, भगवान ने कहा कि अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। कीर्ति मतलब होता है यश, तुम्हारा यश चला जाए। अब मनुष्य रूप लेकर भी अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा भी क्या चला जाएगा? यश चला जाएगा, है ना। हम लोगों को जब हम डेड हो जाते हैं तो हमें क्या कहा जाता है? मुर्दा, है ना, मुर्दा। ये शरीर की स्थिति है, मुर्दा। मान लीजिए अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए, हड्डियां निकाल दें, मांस निकाल दें, पीप निकाल दें, खून निकाल दें, गॉल ब्लैडर लिवर इंटेस्टाइन इकट्ठा कर दें एक जगह पर, सेरिब्रम मेडुला लाके एक जगह इकट्ठा कर दें, पूरे शरीर को बैक करके एक पैकेट में बंद कर दें और बोले ये कौन है? बोले ये प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं। वो भेद कर पाए कौन प्रभु जी कौन माता जी है? तो हमारे उस शरीर के लिए जो कि जब तक एक साथ जुड़ा हुआ है बहुत सुंदर दिखता है, जैसे ये बाल हमारे तो है नहीं लेकिन आपके जैसे ये बाल हैं, ये बाल आपके बड़े सुंदर लगते हैं। आप ब्यूटी पार्लर में कितना खर्चा करते हैं? पुरुष लोग भी आजकल तकरीबन 50 रुपए लगाते हैं हर 15 दिन में, 10 दिन में। माताएं भी 200-250 रुपए लगाती हैं, कर्लिंग कराते हैं, पता नहीं क्या क्या कराते हैं उसमें। हाँ, तो ये सारा कुछ कराते हैं, लेकिन एक बाल जब सर से अलग होकर बाथरूम की नाली में फंस जाता है और आकर के बच्चा कहे मम्मी मम्मी या पापा पापा आपका बाल, तो उसे रख पाएंगे वापस सिर पे? क्या कहेंगे? इसे फेंक दो गंदगी में, ये गंदगी है। तो जब तक हमारे शरीर से जुड़ा है, हमारी आसक्ति इतनी है कि इस गंदी चीज को भी हम बड़ा अच्छा मानते हैं और इस पर खर्चा करते हैं। लेकिन जिसके कारण ये अच्छा है, जैसे बाल अलग हो जाने पर वेस्ट हो जाता है, ऐसे ही शरीर आत्मा से अलग हो जाने पर मुर्दा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब तक आत्मा इस शरीर में है, क्या कर्तव्य इस शरीर का? हाँ जी, भगवान को जितना हो सके प्राप्त कर लो, ज्यादा से ज्यादा साधुओं का संग करिए। अभी 2 साल से आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम आते हैं सेक्टर 13 द्वारका से, आप में से कितने भक्त आए भगवान को देखने वहां? जी देखिए हमारी कितनी उत्साह है हमारे अंदर कि हम जाएं। जैसे आपको बताते हैं कि कुछ भक्त होते हैं जो बड़े उत्साहित होते हैं। एक हमारे भक्त हैं, वो मेडिकल कंपनी में काम करते हैं। उनका काम है नेशनल ट्रैवलिंग करना, पूरे इंडिया में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं। तो जहां जहां वो जाते हैं, पहला काम उनका होता है कि वो इस तरह की बुकिंग करते हैं अपने कि जाकर मैं यहाँ पे जो इस्कॉन केंद्र है उसको जाके दर्शन करूं भगवान का, फिर अपना काम करते हैं और लौट कर फिर वहां का प्रसाद लाते हैं हमारे लिए और वहां की फोटो लाते हैं और पूरी इंडिया घूमते हैं वो। तो कितना उत्साह है उनके अंदर भगवान का दर्शन करने का। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ दिल्ली में 13 केंद्र हैं इस्कॉन के, किसने देखा? देखिए क्या उत्साह है हमारा भगवान की भक्ति के लिए। तो ये इसका मतलब, हमने मनुष्य शरीर पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाया, जानबूझकर पॉइजन खा रहे हैं। एक होता है अचानक खा लिया, ये जानबूझकर खा रहे हैं, है ना? और जानबूझकर कौन खाता है पॉइजन? जिस दिन व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करना चाहता है, क्या खाता है? पॉइजन खाता है। तो हम चाहते हैं कि हम कभी भगवान को प्राप्त ना करें। चाहते हैं आप लोग भगवान को कभी प्राप्त ना करें? चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? भगवान को इसी शरीर में प्राप्त करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन, भगवान की साधना, भगवान का दर्शन, साधुओं का संग, नियमों का पालन, प्रसाद का सेवन, आनंद का जीवन। शरीर में रहते रहते भगवान की अनुभूति हो जाएगी, और कई लोगों को हुई है। ये बहुत ही समझने वाली स्थिति है, लेकिन हम इसे थोड़ी सरलता से जाने देते हैं। और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी कीर्ति ही नहीं जाएगी। एक होता है कीर्ति चली जाती है और उसके बाद में कुछ समय कालीन के बाद कीर्ति वापस आ जाती है, ऐसा भी होता है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान, रामचंद्र भगवान के लिए लोगों ने बड़ा ही प्रशंसा की जगह अपयश फैलाया। रावण ने क्या कहा? अरे क्या कर लेगा एक ये क्षत्रिय पुत्र जो अपने धनुष बाण, अपनी सारी राजगद्दी को त्याग करके जंगल में विचरण कर रहा है। अगर वो भगवान होता विभीषण, रावण ने कहा, तो क्या वो राजगद्दी पर विराजमान नहीं होता? ये देखो मुझे, मैं राजगद्दी पर विराजमान हूं, क्या है राम के पास? कोई शक्ति नहीं है। देखो यहां तक कि उसकी पत्नी को भी बाहर निकाल दिया, उसके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है, रहने के लिए घर तक नहीं है। ऐसा गरीब एक मुनि क्या मेरा मुकाबला कर पाएगा? सभी लोगों में कीर्ति फैला दी, अपकीर्ति फैला दी, अपयश फैला दिया। और सभी लोगों को यह बात का एहसास हुआ, राक्षसों को, कि राम सच में एक साधारण मनुष्य है। लेकिन भौतिक बुद्धि के कारण लोग समझ नहीं पाते भगवान की महिमा को। भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में मैं नाम के रूप में हूं। भौतिक बुद्धि के कारण राक्षस भगवान को समझ नहीं पाए, ऐसे हम भी राक्षस प्रवृत्ति के होने के कारण नाम को समझ नहीं पा रहे। दुर्योधन, लोग कहते भगवान का दर्शन बड़ा जरूरी होता है। मैं हमेशा उन लोगों से एक प्रश्न करता हूं, चार धाम यात्रा का जैसे सुनेंगे ना, चार धाम यात्रा जारी है, वो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराते हैं और बूढ़े बुजुर्गों से मिलने जाओ ना, कहो कि भजन करिए। अरे जी हमने तो पूरा जीवन भजन ही किया है। क्या किया भजन में? चार धाम यात्रा करी हमने, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, हम जाए गंगोत्री जमुनोत्री, हम गए कहां पर, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। लेकिन भजन क्या किया? जीरो। दर्शन करने से अगर भगवान की श्रेष्ठता ही नहीं समझे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक ही भगवान है, कौन?
कृष्ण।
ये बात अगर नहीं स्थापित हुई हमारे हृदय में तो ये शरीर जो है जो मिला जिस कार्य के लिए वेस्ट हो गया। ये एक हमारी अपकीर्ति है, अपयश है ये हमारा मनुष्य। तो रावण ने ऐसे फैलाया और भौतिक बुद्धि के कारण लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे दुर्योधन, भगवान कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं और दुर्योधन भी देख रहे हैं। रात दिन भगवान का दर्शन करते थे, हम तो विग्रह का दर्शन करते हैं, वो साक्षात भगवान का दर्शन करते थे। लेकिन दुर्योधन क्यों नहीं भक्त बना? दर्शन से अगर फायदा मिलता तो दुर्योधन को क्यों राक्षस की कैटेगरी में डाला जाता है? क्यों धृतराष्ट्र को सही मायने में भक्त घोषित नहीं किया जाता? कृष्ण तो उनके घर में आते थे। क्यों शकुनी को भक्त नहीं माना जाता? बताइए, है इसका जवाब? अगर दर्शन से भक्त बनते तो सब क्यों नहीं बने? लेकिन अर्जुन ने गीता को सुना और गीता के अनुसार अपने जीवन को जिया, इसलिए उसको भक्त की कैटेगरी में डाला जाता है। और आज मंगलवार को पिछले 2 साल से आप लोग उसका श्रवण कर रहे हैं गीता का। इतना यश प्राप्त किया कि इसकी कीर्ति कभी घटती नहीं है। लेकिन कब? जब भगवान के कहे अनुसार उन्होंने अपना जीवन जिया। हम नहीं जिएंगे तो हमें क्या मिलेगी? अब कीर्ति, अब यश, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। और हो रहा है समाज में, बच्चे सुनते नहीं है, मैरिज कर लेते हैं, भाग जाते हैं, फिर माँ बाप घर बेच करके वृंदावन चले जाते हैं। कह रहे क्या करें, अब हमारा सोसाइटी में अपयश हो गया है बहुत। एक ब्राह्मण का पुत्र जो है वो शूद्र से जा शादी करेगा, कोई क्षत्रिय किसी और से शादी करेगा, ये सारा कुछ चल रहा है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि अगर ये सब मारे जाएंगे तो वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाएगा। एक क्षत्रिय को क्षत्रिय में विवाह करना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण में विवाह करना चाहिए, शूद्र को शूद्र में, वैश्य को वैश्य में। इसे वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। और एक वैष्णव को वैष्णव में विवाह करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये वर्ण आश्रम धर्म या वैष्णविज्म का पालन नहीं करेंगे तो हम अपयश मिलेगा। मिलता है कि नहीं? क्षत्रिय का पुत्र अगर शूद्र के परिवार में विवाह करे तो क्या मिलेगा? यश मिलेगा, अपयश मिलता है। तो वही यहां पर कह रहे हैं, रामचंद्र जी का इतना अपयश फैलाया रावण ने, परंतु रामचंद्र जी ने तीर मारा रावण को, उसका वध करने के बाद अपनी कीर्ति को पुनः प्राप्त किया। सब समझ गए कि रामचंद्र कौन है? भगवान। ऐसे ही, हाँ जी,
कानून में तो ना लिखा ये चीज।
कानून को नहीं मानते ना, भगवान के कानून को मानते, इसीलिए गीता पढ़ते हैं।
अब वो लव मैरिज करने वाले तो सीधे कोर्ट में जावे ना, जब हाँ। बच्चे जब,
तो वही तो अपयश तो मिलता है। वही तो, इसको संस्कार देने, शुरुआत से संस्कार देने, हमारा कर्तव्य संस्कार देना है ना। तो इसी को बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे। आप सुनिए पहले कथा, उसके बाद में समय समाप्त हो जाएगा वरना, ठीक है? तो इस तरह से बताया गया कि अब कीर्ति का आदमी को प्राप्त होती है। हरे कृष्ण आंदोलन जब श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में चलाया तो लिया, स्वीकार किया लोगों ने? नहीं स्वीकार किया। अपयश। क्या बोला? ये जो इस्कॉन केंद्र वाले हैं ना, ये CIA के एजेंट हैं। हमारे हिंदुस्तान, हमारे विदेश का जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है ये हिंदुस्तान भेजते हैं। और लोगों ने कहा कि ये लोग नशा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। उसके ऊपर एक महान कलाकार थे देवानंद, उन्होंने एक पिक्चर भी बना डाली। पता कौन सी थी? कौन सी थी? हरे कृष्ण हरे राम। उसमें गाना था दम मारो दम मिटे किसी के, सिगरेट पीने से किसी के दम मिटते हैं क्या? तो फिर तो जितने भी सिगरेट पीने वाले दुकान पे हैं, सिगरेट वाले की छोटी सी दुकान होती है उस पे लिखना चाहिए दम मारो दम मिट जाएंगे गम। वो सबसे बड़ा संत होता अगर सिगरेट पीने से सारे गम मिट जाते। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास भक्त आए, बोले प्रभुपाद गजब हो गया। क्या हुआ? प्रभुपाद ने पूछा, कहा प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन केंद्र के खिलाफ हो गई है सरकार। कह रहे हैं एक हिंदुस्तान में कलाकार हैं देवानंद जी, उन्होंने एक पिक्चर बनाई है जिसमें कहते हैं हम लोग दम मार के, मतलब सिगरेट पी के, नशा करके, चिलम पी के, शराब पी के नाचते कूदते हैं, इसलिए हमारे अंदर इतना जोश है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, कहा हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें? ना कोई जरूरत नहीं, प्रभुपाद जी ने माना कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कहा क्योंकि ये अपकीर्ति कुछ समय की है, उसके बाद समाप्त हो जाएगी और दम मारो दम को लोग भूल जाएंगे, खाली क्या याद रखेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। कई लोगों ने इस्कॉन के ऊपर केस कर दिया। एक सोसाइटी थी क्रिश्चियन सोसाइटी, ईसाइयों की धर्म की सोसाइटी, ये लोग उस भगवान को मानते हैं जिसका कोई चरित्र नहीं है। 16,108 औरतों के साथ जिसका संबंध हो वो चरित्रहीन है। कोर्ट में केस हो गया, कोर्ट में केस कर दिया। प्रभुपाद जी के पास भक्त गए, प्रभुपाद जी हमारे ऊपर केस हो गया है, क्या करें? प्रभुपाद जी ने कोई बात नहीं, आप जाइए और भागवतम ग्रंथ का पहला श्लोक पढ़िए। अभी अपनी हियरिंग होती है, सुनवाई, अपने अपने कटघरे में खड़े हो जाओ और जो जज है उसके सामने बोलो। तो भक्त जाते थे, भागवत ग्रंथ को खोलते थे, पहला श्लोक पढ़ते थे, अनुवाद पढ़ते थे, तात्पर्य पढ़ते थे, समय निकल जाता था। अब वो पहला दिन निकल गया। हियरिंग इज एडजर्न फॉर टुडे, आज के लिए हियरिंग जो है सुनवाई कार्रवाई रोकी जाती है, कल होगी। फिर प्रभुपाद जी के पास फोन आया, प्रभुपाद जी आज का तो निकल गया दिन, अब कल क्या बोले? प्रभुपाद जी ने कहा दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक पढ़िए। ऐसे कई दिनों तक चला, 15 दिन 20 दिन तक भागवत कक्षा चलती रही। अब जो सुनने वाले थे उनको इतना अटैचमेंट हुआ, जैसे आप लोग मंगलवार को अपने काम धंधा छोड़ के दौड़े चले आते हैं कथा सुनने, ये कथा की रुचि है। तो जो लोग कोर्ट में सुनने आते थे अपना केस, वो सबको कथा का रुचि उत्पन्न हो गई। सब बोलते थे अगला क्या श्लोक होगा, आगे की कथा क्या होगी, तो भी कंटिन्यूड करके आगे चल जाती थी कथा। तो इसी तरह से टू बी कंटिन्यूड रहा। 15 दिन बाद ये हियरिंग का जवाब निकला कि जो कोर्ट का हेड था जज, जज ने कहा ये तो ऐसे समझ में आ नहीं रहा, क्या कैसे सॉल्व करूं, केस बड़ा पेचीदा है। ये लोग कहते हैं इनका भगवान चरित्रहीन है, ये लोग कहते हैं कि ये लोग कोई कल्ट है, कल्ट मतलब कि ये कोई अपने मन के अनुसार बनाया गया धर्म है, और ये लोग कहते हैं कि हमारा धर्म प्राचीन है, युगों युगों से भगवान कृष्ण की भक्ति करी जा रही है, सूर्यदेव के पुत्र विवस्वान ने करोड़ों वर्ष पहले भगवान से गीता प्राप्त करी, अर्जुन ने 5,000 साल पहले गीता प्राप्त करी, इनका धर्म प्राचीन है ये कहते हैं, और अंग्रेज लोग कहते हैं कि इनका धर्म तो अभी मानसिक रूप से उत्पन्न कोई कल्ट है, कोई एक पारंपरिक व्यवसाय बना लिया इन्होंने। तो ये सॉल्व नहीं हो रहा था, केस बड़ा खतरनाक था। तो जज ने, उसी समय भगवान ने उसके हृदय में स्फूर्ति करी, भगवान ने प्रेरणा दी कि जब तुम पढ़ाई करते थे उस समय तुम्हारा एक मित्र था जो कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने में रुचि रखता था, तो उसने अपने दोस्त का नंबर ढूंढा और उसका दोस्त अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टरेट ऑफ रिलीजन था, उसने PhD किया था रिलीजन में धर्म के ऊपर, और वो प्रोफेसर था एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, हाउ टू अंडरस्टैंड रिलीजन। तो लोगों को रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म के प्रति रुझान कैसे किया जाए, इसके बारे में लेक्चर देता था यूनिवर्सिटी में। उसने उसको फोन किया और कहा कि बताइए ऐसा कोई धर्म है। उसने कहा अरे आपने स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तक गीता नहीं पढ़ी अभी तक? तो जज ने कहा नहीं। कहा ठीक है मैं आपको कॉपी दूंगा। कहा अरे वो देना तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले ये बताओ क्या ये प्राचीन धर्म है? उसने कहा ये प्राचीन धर्म नहीं है, यही एक धर्म है, भगवत गीता ही एक धर्म है, बाकी सारे धर्म इसी धर्म के अनुसार बनाए गए हैं अपनी अपनी सरलता के अनुसार। जैसे हिंदू धर्म भी कोई धर्म नहीं है, भगवत गीता के कुछ अंशों को लेकर हिंदू धर्म, कुछ अंशों को लेकर मुसलमान धर्म, कुछ अंशों को लेकर ईसाई सिख और भी अनेकों धर्म निरंकार, ये सारे धर्म गीता से ही निकल रहे हैं। अपने अपनी सरलता अपने अपने स्थिति के अनुसार लोगों ने समय काल परिस्थिति में धर्मों को पैदा किया। एक ही धर्म है सनातन धर्म जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की शिक्षा दी जाती है। तो उसने कहा अच्छा छोड़ दो इनको। कहा छोड़ दो और इनके पर्चे पे स्टैंप लगा दो कि ये रिलीजन ये धर्म प्राचीनतम है। इतने में भक्तों का प्रभुपाद जी से चर्चा चल रहा था, भक्तों ने वो जो सोसाइटी थी नन वाली, नन्स जो थी उनके ऊपर क्लेम कर दिया। उन्होंने कहा आप जा तो रहे अपना रिलीजन हम बनवा के इनके ऊपर भी एक केस कर जाते हैं। क्या केस किया? उन्होंने नन से कहा आप एक बात बताइए, जब आप लोग नन बनती हैं क्रिश्चियनिटी धर्म में नन का चोला धारण करते, जैसे हम भक्त दीक्षा लेते हैं, अभी योगेश प्रभु ने दीक्षा लिया, योगीनाथ दास नाम पड़ा, दीक्षा लेने के बाद कुछ नियमों का पालन करने का वचन दिया जाता है। क्या हम चार नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, एकादशी में 25 माला करेंगे, दीक्षा होगी। ऐसे नन की भी दीक्षा होती है, सिख धर्म में भी दीक्षा होती है। सिख धर्म में उसे अमृत चखना कहते हैं, ईसाई धर्म में उसे मौलवी बनाना कहते हैं, और इसी तरह से क्रिश्चियन धर्म में भी नन, और मतलब जो नन होती है उसे सिस्टर या फिर ब्रदर, प्रीस्ट या पादरी, ऐसे कहकर अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, दीक्षा दी जाती है। उसने कहा जब आप नन बनने का कमिटमेंट लेते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं अपने फादर से, तो आप क्या बोलते हैं? तो नन ने कहा हम बोलते हैं कि वी विल नॉट गेट मैरी, हम विवाह नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा पति कौन है? जीसस है। तो उन्होंने पूछा आपके वर्ल्ड में कितनी नन है, कितनी नन है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो लाखों हैं। कहा जब लाखों वाले को आप भगवान कह सकते हैं, कि हम 16,000 वाले को भगवान नहीं कह सकते? तुरंत वो रिलीजन हमारा स्थापित हो गया, और आज तक लोग पूरे विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन को प्रसिद्धि मानते हैं, एक प्राचीनतम धर्म मानते हैं, और सब जपते हैं और आनंद में रहते हैं। तो दम मारो दम से मिटते नहीं है गम, हरे कृष्णा से मिटते हैं गम, ये बात स्थापित हुई। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को कह रहे हैं कि जिसको अब कीर्ति मिलती है, कुछ समय बाद कीर्ति वापस आ जाती है, परंतु अर्जुन तुम्हारी कीर्ति जो है इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में एक शब्द आया है अव्ययम, सदा के लिए, अव्ययम, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी सदा के लिए, वापिस नहीं आएगी। अरे बाप रे, कीर्ति नष्ट हो जाए तो टेंशन होती है। जैसे बच्चों के विवाह पे अभी चर्चा प्रारंभ हुई थी, हमारे प्रभु जी ने शुरू करी, धर्मपाल प्रभु ने, बच्चों के विवाह पे टेंशन होती है, परंतु कुछ समय बाद जैसे इन्होंने कहा वो कोर्ट में शादी कर लेते हैं, फिर माँ बाप क्या करें, शरणागत हो जाते हैं, एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेते हैं, फिर कीर्ति वापस मिल जाती है, सदा के लिए नहीं जाती है। लेकिन यहां भगवान अर्जुन को कह रहे हैं इस श्लोक में, तुम्हारी कीर्ति तो जाएगी पर, तो बहुत मुश्किल की बात है, कैसे अपनी कीर्ति को वापस पुनः प्राप्त करोगे? तो उन्होंने बताया, फिर वहां पर भगवान उनको कह रहे हैं कि अब कीर्ति को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करो, है ना। जैसे अगर हम भगवान को इस शरीर में प्राप्त करना चाहते हैं तो जो कुछ भी करना पड़े, नींद का त्याग करना पड़ेगा, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, हाँ तो ये त्याग करना पड़ेगा। आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र जब वो वापस सीता मैया को लेकर अयोध्या आए, तो सीता मैया पे ही लोगों ने अपकीर्ति लगा दी, कहा जो स्त्री एक दिन के लिए चली गई, धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था कि मेरी पत्नी एक दिन किसी के घर चली गई तो मैंने उसे घर से निकाल दिया, और वो देखो राजा राम उसकी पत्नी 9 महीने तक कहां रही, श्रीलंका, लंका के घर में रही, रावण के घर में रही, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग अभी तक नहीं, तो 9-10 महीने जो रह के आई उसका त्याग नहीं किया। सोचिए राम कितने पतित हैं, जो पतित पावन है उनके लिए क्या कहा गया कि वो पतित हैं, लेकिन भगवान राम ने कहा कि अब कीर्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वो गए अपने राज दरबार में। राज दरबार में उनके सारे जितने भी प्राचीन गुरु हुए हैं, जितने भी उनके वंशज हुए राजा, सभी को उन्होंने प्रणाम किया, और उनके वंशज अपने अपने विग्रह से निकलकर उनसे बात करते थे। भगवान है, आत्मा मरने के बाद तो भगवान के पास जाती है, और रामचंद्र जी तो भगवान है, तो उनके विग्रहों में से निकल कर के बात करते थे। दशरथ के विग्रह से दशरथ निकले, अज के विग्रह से अज निकले, सगर के विग्रह से सगर निकले, हाँ, तो इसी तरह से भृगु के से भृगु ऋषि निकल आए, रघु राजा जो हुए रघुकुल, वो रघु राजा निकल आए, सारे राजा निकल आए, और उन्होंने कहा क्या करूं मैं, पितामहों, मेरे पूर्वजों, मेरे ऋषियों, मैं क्या करूं अपनी अपकीर्ति को बचाने के लिए, क्या मैं सीता का त्याग कर दूं? सभी ने कहा हाँ सीता का त्याग कर सकते हो, लेकिन राजा राम ने कहा परंतु उनका तो कोई दोष ही नहीं है, रावण जिसको उठा के लेके गया वो तो माया सीता थी, और जो असली सीता थी उन्हें मैंने अग्निदेव को प्रदान कर दिया था, और जब मैंने रावण का वध किया तो इसीलिए मैंने अग्नि परीक्षा करी कि माया सीता को वापस अग्नि में प्रवेश कराया, और अग्नि से जो बाहर आई वो मेरी ओरिजिनल मेरी सीता थी, तो मेरी सीता तो कभी लंका में एक भी दिन नहीं रही। उन्होंने कहा परंतु विश्व प्रसिद्ध जो चर्चा है, वो अपकीर्ति है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इस अपकीर्ति को बचाने के लिए तुम्हें त्याग करना चाहिए। लेकिन राजा राम, भगवान राम मानने को तैयार नहीं थे। इतने में सीता जी प्रवेश कर गए। सीता जी ने कहा, जब आप राजा बने थे तब आपने क्या प्रतिज्ञाएं ली थी, जरा याद करिए। सीता जी ने याद कराया, भगवान राम ने कहा, मुझे याद है मैंने कहा था इस सिंहासन की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो इस सिंहासन की इज्जत बचाने के लिए मैं वनवास गया 14 वर्ष, और आज आपको इस सिंहासन की इज्जत बचाने के लिए कि राजा राम जो है वो सही निर्णय लेते हैं, चाहे अपने परिवार का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। तो ने सीता जी ने कहा, आप मेरा त्याग कर दीजिए, तभी आपकी कीर्ति कायम रहेगी। तो भगवान राम ने कहा, ठीक है सीता, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो। उन्होंने तो भगवान राम ने सीता जी की इच्छा से सीता जी को कहा। लोग सोचते हैं भगवान ने सीता को निकाल दिया, कैसे भगवान है, वो जानते नहीं ये चर्चा क्या हुई। सभी वंशजों, सभी ऋषि, सभी मुनियों के बीच में बैठकर चर्चा हुई। सबने कहा, बेटी तुम्हारा डिसीजन ठीक है, और भगवान तो घटघट का वासी है, यहां जितने तुम्हें प्रेम करेंगे उतना ही तुम वाल्मीकि आश्रम में जाओगे, प्रेम करेंगे तुमको, इस तरह से वर्णन आया। तो भगवान ने अपनी अपकीर्ति बचाने के लिए क्या कर दिया, सीता जी का त्याग किया। और हम अपनी भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ कुछ चीजों का त्याग नहीं कर सकते हैं? तो हमें भी त्याग अपने जीवन में सोचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, तो एक सन्यासी जो है उसको विषय राजाओं से नहीं मिलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी अपकीर्ति को बचाने के लिए, एक राजा थे राजा प्रताप रुद्र, उड़ीसा के राजा है। राजा प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े अनन्य प्रेमी भक्त थे, भगवान महाप्रभु से मिलना चाहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपने भक्तों से, स्वरूप दामोदर, मैं कभी भी विषयी राजा से नहीं मिलूंगा। स्वरूप दामोदर ने पूछा, परंतु क्यों, वो आपका भक्त है। कहा, भक्त तो है पर वो विषयी है, सदा रात दिन स्त्रियों का संग करता है, सिंहासन का संग करता है, हमेशा इसमें रहता है कैसे मेरा राज्य चले, लक्ष्मी का कैसे मैं धन को एकत्रित करूं, कैसे दूसरे राजाओं पर विजय प्राप्त करूं, घोड़े आदि के संग्रह में लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे भक्त हो सकता है? भक्त तो वैरागी होता है, त्यागी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कपड़े वपड़े छोड़ करके जंगल निकल जाएं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे भक्तों का वैराग यही है कि हम अपनी नींद का वैराग करें, नींद का त्याग करें, सुबह जल्दी उठें। हम अपने लिए एक जगह बैठकर कम से कम 8 माला एक जगह बैठ के कर सकें, 16 करें तो बहुत अच्छा। तो अपने कमर का दर्द का त्याग करना पड़ेगा, कुर्सी का त्याग करना पड़ेगा। इस तरह से भगवान को भोग लगाएं तो 10 मिनट रुकना पड़ेगा। ये 10 मिनट का जो गैप है ये बड़ा ही वैराग उत्पन्न करता है। लेकिन लोग ये भी नहीं समझते, भोग लगाएंगे तुरंत उठा लेते हैं, रहा नहीं जाता। ये जो भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं हम लोगों के लिए यही वैराग्य है। हमें जंगलों में या पर्वतों पे नहीं जाना है, अपने घर में रहते हुए जप आदि साधन को पालन करें, ये वैराग्य है हमारा। तो ये वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक सन्यासी को राजा से नहीं मिलना चाहिए, ऐसे ही एक भक्त को अभक्तों से नहीं मिलना चाहिए। जितना आप अभक्तों से मिलेंगे, जो भक्त नहीं है वो आपको क्या देंगे? आजकल पता चल रहा है क्या चल रहा है, टीवी में क्या चल रहा है, तूने वो सीरियल देखा? अरे एक पिक्चर आई है ना दंगल, वो देखो। मंगल हो ना हो दंगल देखो। तो आजकल लोग मंगल आरती नहीं कर रहे, दंगल आरती कर रहे हैं, और इसीलिए फिर उनके जीवन में भी दंगल होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं। तो इसलिए भक्तों को क्या करना है, भगवान जैसा बोल रहे हैं कि त्याग की भावना रखिए। तो इसी तरह से अपकीर्ति को हमें बचाने के लिए चाहे कुछ भी हो हमें प्राप्त करना चाहिए। एक बालक था, छोटा सा लड़का, चैतन्य महाप्रभु का प्रेमी भक्त बन गया उड़ीसा में। उसका पिता नहीं था, पंडित के घर का बच्चा था, पिता गुजर चुके थे, उसकी माता बहुत सुंदर थी। चैतन्य महाप्रभु के पास आता, उनकी सेवा करता, उनका प्रसाद पाता, भगवान का प्रसाद डायरेक्ट मिलता था उसको। चैतन्य महाप्रभु ने लेकिन एक दिन कहा उस बच्चे से कि बेटा तुम आया मत करो मेरे पास। कहा, मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूं, आपका भक्त हूं, आपका सेवक हूं। ने कहा, तुम जाओ, आप मेरे पास मत आया करो। कहा, क्यों? कहा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि लोग मेरे बारे में चर्चा करते हैं कि एक सन्यासी इस बालक से इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि इसकी माता बहुत सुंदर है और उसका पिता भी नहीं है। अब कीर्ति फैल जाएगी, तो अब कीर्ति जो है ये सही मायने में मृत्यु से भी खतरनाक है। चाणक्य पंडित कहते हैं जो तृतीय श्रेणी का होता है, थर्ड कैटेगरी, वो भोजन के भय से भयभीत रहता है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे क्लास 2 बज गए, लेट हो रही है, प्रसादम लेट हो जाएगा, भागना पड़ेगा ऑफिस के लिए, प्रसाद रह जाएगा हमारा। भोजन के लिए जो भयभीत है वो थर्ड कैटेगरी है, जो मृत्यु के लिए भयभीत है वो सेकंड कैटेगरी है, और जो अपनी कीर्ति को कायम रखने के लिए भयभीत है वो फर्स्ट कैटेगरी है, कहीं मेरी कीर्ति ना चली जाए। तो मनुष्य शरीर पाकर या आत्मा की कीर्ति यही है कि वो कीर्तिमान मृत्यु प्राप्त करे, आत्मा भगवान का भजन करते हुए शरीर को छोड़े ना? मरने के बाद बोले राम नाम सत्य है तो फायदा क्या, अभी सुन नहीं सकती, आत्मा तो चली गई, और जब तक शरीर में है तब तक राम का नाम असत्य लगता था। तो इसलिए जीते जी हमें क्या करना है, राम के नाम का भजन करना है। अगर हम वो करेंगे तो हम सही मायने में भगवान की कीर्ति को कायम रख सकते हैं। तो भगवान ने स्वयं, एक छोटी सी कथा बता के समाप्त करूंगा, कि भगवान ने स्वयं अपनी कीर्ति को कायम रखने के लिए कहा कि एक व्यक्ति को, जैसे हम लोग भक्त हैं, तो एक भक्त को अपनी कीर्ति को कायम रखने के लिए त्यागना चाहिए। एक दिन भी ऐसा ना जाए, रोटी खाएं ना खाएं, लेकिन कहीं ऐसा कोई ना कह दे बड़े भक्त बनते हैं, आपके घर वाले ही कहेंगे आपको बड़े भक्त बनते, देखा कितना क्रोध है, बड़े भक्त बनते देखा 16 माला तो करते नहीं है, सुन सुन के आते गीता रख ली, एक भी श्लोक जीवन में पालन किया क्या, ये अपकीर्ति है हम सबकी। अपनी अपकीर्ति को कायम रखने के लिए भगवान कह रहे हैं मृत्यु को भी स्वीकार कर लो पर अपकीर्ति मत होने दो। एक भक्त को अपनी कीर्ति को बनाए रखना चाहिए। भगवान के वहां द्वारका, जब भगवान द्वारकाधीश थे तो भगवान के वहां पर एक राजा रहता था, उसका नाम था सत्राजीत राजा। सत्राजीत राजा जो था उसके पास एक मणि थी, उसका नाम था सम्यक्तक मणि। सम्यक्तक मणि जो थी उतनी ताकतवर थी, भगवान सूर्य ने उसे प्रदान की कि उस मणि को जिस चीज से छुड़ा दो वो क्या बन जाएगी, सोना बन जाएगी। अब वो बड़ा धनी हो गया, भगवान कृष्ण से बराबरी करने लगा कि हे द्वारकाधीश तेरे पास क्या है, मेरे पास सम्यक्तक मणि है। अब वो जानता नहीं था भगवान भगवान है। उसका एक भाई था, वो द्वेषी बन गया, उसका नाम था प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत जो था उसने सत्राजीत की मणि को चुरा लिया और अपने गले में डाल करके भाग गया जंगल की ओर। जब जंगल में गया तो चमकता हुआ उसका मणि रात में चमक रहा था, तो शेर आदियों ने सोचा कि ये कोई हिरण की आंख है, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया, हमला करके उसको खा गए, उसकी चमकती मणि ने उसका वध करा दिया। और इस तरह से जो शेर था वो उस मणि को मुंह में दबाए हुए गुफा में प्रवेश कर गया। उस गुफा में जामवन जी रहते थे जो भगवान राम के साथ में युद्ध किए थे, जामवन जी उसी गुफा में रहते थे, उन्होंने उस शेर का वध करके वो मणि को प्राप्त कर लिया। अब मणि किसके पास पहुंच गई, जामवन जी। लेकिन सत्राजीत ने पूरे द्वारका में फैला दिया भगवान कृष्ण चोर हैं, पहले माखन चुराते थे फिर वस्त्र चुराए, अब की बार तो ऐसी हद करी मेरी मणि चुरा ली। चोर अपनी चोरी से नहीं जा रहा है, सारे लोगों के बीच में चर्चा होने लगी, खुशफुस, पूरे द्वारका के वासी द्वारकाधीश पे डाउट करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा अपनी कीर्ति को कायम रखने के लिए कुछ भी करना पड़े करूंगा। भगवान ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गए तो वहां शेर मरा पड़ा मिला। आगे गए उसी चिन्हों को, शेर के चिन्हों को देखते देखते प्रसन्नजीत मरा पड़ा मिला पहले, फिर शेर मरा पड़ा मिला, तो वहां जब पहुंचे तो वहां जामवत जी मिल गए, भालू। उस रीछ से जब मिले तो कहा ये हमारी मणि दे दो, तो जामवन जी ने कहा, जो रीछ थे रामचंद्र जी उन्हें पहचान नहीं पाए, या पहचानते तो जो लीला थी, तो भगवान कृष्ण उनको पहचान नहीं पा रहे थे, लीला कर रहे थे। रीछ ने कहा ये मणि नहीं दूंगा, इस मणि को लेने के लिए मुझसे लड़ना पड़ेगा। पता, लड़ाई चालू हुई। अब भगवान है, चाहते तो एक मिनट में मार देते, परंतु भगवान लीला कर रहे हैं। 28 दिनों तक युद्ध चला, कितने दिनों तक, 28 दिनों तक युद्ध चला। कभी कृष्ण भगवान जामवंत को मारे, कभी जामवंत कृष्ण भगवान को मारे, और विजयी कौन हुआ, कोई भी नहीं, दोनों बराबर थे, इक्वल पावर। तो जामवंत ने पूछा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे प्रभु हैं। कहा क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। कहा क्योंकि जब मैं त्रेता युग में था तो मैंने भगवान राम से कहा कि भगवान राम आपने मुझसे काफी सारी गाइडेंस मांगी परंतु युद्ध में मुझे मदद नहीं करी। सभी लोगों से आप लड़े, सबको युद्ध में लगाया, किसी को राक्षसों से लड़ाया, किसी को खुद से लड़ाया, सबसे लड़े। मैं खड़ा खड़ा रह गया, इतना ताकतवर होकर मैं लड़ भी नहीं पाया। भगवान बोले चिंता मत कर, किसी से नहीं, मैं तुझसे खुद ही लड़ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप मुझसे लड़ेंगे तब तो मजा आ जाएगा लड़ाई का, तो हो जाए दो दो हाथ। भगवान ने कहा अभी नहीं, कुछ समय इंतजार करो। तो भगवान ने ये बोला था कि इंतजार करो मैं आऊंगा लड़ने, तो भगवान कृष्ण आए लड़ने। यही सम्यक मणि की लीला थी। और भगवान ने जामवंत जी को मारा, युद्ध में हराया, लेकिन हारे नहीं, बराबर रहे। वो समझ गए मेरे प्रभु हैं और उन्होंने नतमस्तक होकर भगवान के चरणारविंद पर प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो जामवंत जी ने कहा, बोलिए भगवान मुझ पर कृपा करिए। बोले कैसे कृपा करूं? कहा एक बाप के ऊपर बेटी की विवाह जो है बड़ा ही कर्तव्य होता है, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है दे दो। तो जामवंत की पुत्री जामवंती भगवान की आठ पटरानियों में से एक रानी बनी, उससे विवाह करके भगवान उसे वापस ले आए और सम्यक मणि दहेज में प्राप्त हो गई, जैसे दहेज होता है ना, दहेज में प्राप्त हुई। सम्यक मणि लेकर के उन्होंने सत्रजीत राजा को बुलाया और कहा ये लो तुम्हारी मणि, ऐसे ऐसे प्राप्त हुई है। जब सभी लोगों ने ये कथा सुनी, सबने कहा कि सत्रजीत जी ने गलती करी है। भगवान कृष्ण जिनके ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए, उनके वचन पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, फिर भी भौतिकवादी माया ऐसी है, गीता पे भी लोग डाउट करते हैं, हरि नाम पे भी डाउट करते हैं, भक्तों पे भी डाउट करते हैं और भगवान पे भी डाउट करते हैं, ऐसे भौतिकवादी होते हैं। तो जब इस तरह से सब लोगों ने सत्रजीत का अपकीर्ति करी तो सत्रजीत ने कहा कि भगवान मेरी अपकीर्ति हो रही है, मेरी कीर्ति बढ़ाइए। तो बोले कैसे बढ़ाऊं? कहा मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो फिर सत्यभामा जो है वो है सत्रजीत की पुत्री, उनसे उनका विवाह हुआ। तो जब विवाह हुआ तो फिर से कीर्ति प्राप्त हो गई। तो इस तरह से अब कीर्ति को बचाने के लिए भगवान कह रहे हैं हमें कुछ भी त्यागना पड़े त्यागना चाहिए। तो आज की इस श्लोक की चर्चा में यही है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति सदा के लिए चली जाएगी, इसलिए मेरे आदेश का पालन करो, युद्ध करो। ऐसे हमें भी अपनी कीर्ति को, भक्त की कीर्ति को बचाए रखने के लिए जीवन में जो कुछ भी करना पड़े पर 16 माला कभी हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।